लेकिन सुन तो सकते हैं ना, इसलिए रेडियो संगम 107.9 एफएम ब्रिंग्स अप दिस शो यानी तन्हा तन्हा एंड आई एम हियर योर मुबासित शाहिद टू लेट यू नो अबाउट दैट अमेजिंग एंड स्पूकी स्टोरी. सो दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन हमें ऑब्वियसली आप चाहिए, ऑन बोर्ड चाहिए, आप होंगे तो ही कहानी की शुरुआत होगी. तो जनाब जरा जल्दी जल्दी बताए दैट हु इज लिसनिंग माय शो, कौन सुन रहा है, किसको बेताबी है मेरी तरह, और कौन जो है वो बस बता दो यार, बस मतलब मुझसे नहीं हो रहा वेट.
चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं,
और याद रखिए जो तुम नहीं तो हम भी नहीं, और अगर तुम हो तो हम तो डेफिनेटली हैं जनाब. सो लेट्स
again to the Thursday night show. And जैसे मैंने अर्ज किया कि आज का जो शो है वो होने वाला है काफी स्पेशल, बिकॉज अक्टूबर आ गया है मेरी जान, और जहां तक सबके इल्म में ये चीज होगी तो हेलोवीन इज अराउंड द कॉर्नर, सो द स्पूकी मंथ जस्ट बिगिन. सो मैंने सोचा जब महीना ही ऐसा आ गया है तो हमें बातें भी थोड़ी उसी तर्ज की कर देनी चाहिए, यानी जब हम आपके पास आए तो वो चीज लेकर आए जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे किस्से जो आपको मजबूर कर दे ये सोचने पे क्या वाकई ऐसा भी होता है इस दुनिया में, क्या वाकई इंसानी दिमाग यानी ह्यूमन ब्रेन इतनी कैपेसिटी रखता है, इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो कुछ ऐसा अनोखा सरंजाम दे दे जो इंसानों की नजर में बहुत ही ज्यादा ऑड हो, बहुत ही ज्यादा अजीब हो, बहुत ही ज्यादा होलनाक हो. तो इसलिए दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज से हम उन स्पूकी शोज का आगाज करते हैं. So tonight's, it's the first show of October. Let's begin. So, इस शो की शुरुआत करने से पहले, अपने मौजू के ऊपर आने से पहले, आई एम जस्ट गिविंग यू अ लिटिल एंड रफ सिनॉप्सिस कि जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, लिख रहा था, सोच रहा था तो बहुत मोहतात रह रहा था, क्योंकि जो आज मैं किस्से आपके सामने रखने वाला हूं, जो कहानी का मलबा आपके कानों से उतार कर आपके दिल पर बोझ डालने वाला हूं, वो कहानी दरअसल हकीकत पे मबनी है वो कहानी कुछ ऐसी है कि जिसको शायद बयां करते करते इंसान की जुबां लरखरा जाए और शायद इंसानी सोच मफलूज हो जाए ये सोचकर कि कितने हौलनाक मनाजिर होते होंगे जब ये तमाम तर चीजें रोनमा पजीर हुई तो चलिए शुरू करते हैं और मैं जानता हूं कि आप इस वक्त बहुत ही ज्यादा तवज्जो के साथ मुझे सुन रहे हैं तो सुनते रहिए जो दोस्त यार सज्जन बेली ड्राइव कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज ड्राइव केयरफुली बट अपने वॉल्यूम का जो बटन है उसको ऊंचा कर लो क्योंकि आज एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद मैं बहुत अरसे से इंतजार में था कि आपके पास लेकर आऊं लेकिन जैसे ही मुझे ग्रीन सिग्नल मिला अपने बड़े से अदबो एहतराम के साथ जब उन्होंने कहा कि मैं ये कहानी आप लोगों के सामने रख सकता हूं बयान कर सकता हूं इस बारे में बात कर सकता हूं तो खुद को रोका नहीं मैंने समझाया और बताया कि जो कुछ मैंने रिसर्च किया है लिखा है पढ़ा है वो आपके सामने पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है So tonight, we are going to talk about a monster who lived among us. जो हमारे बीच में ही रहा, शायद हम जान नहीं पाए, शायद उसे पहचान नहीं पाए. जी हाँ, I'm talking about a monster जिसकी series, जिसके ऊपर graphic novels लिखे गए. जिस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई जिस पे हिस्ट्री चैनल ने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर दी नेटफ्लिक्स सीरीज ने उस पर दो दो फीचर फिल्म्स और एक सीरीज अखज कर दी आप तक पहुंचा दी यस आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ मॉन्स्टर Who lived among us and any guesses who was that monster? Let me tell you. So his name was Jeffrey Dahmer. I guess, I believe and I hope that everyone who is listening right now have a bit of knowledge about Jeffrey Dahmer. वो कोई आम इंसान नहीं था वो कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसको हम एक आम इंसान की तरह तश्कील दे सकें या लोगों को उसके बारे में जब समझाना चाहें तो बहुत आम सी बात कर समझाएं हरगिज नहीं मेरे दोस्त यही गलती थी हमारी इस माशरे की कि हम उसको उसकी असलियत को उसके दिमाग में क्या बुन रहा है उस बात को ना सोच पाए ना जान पाए और ना ही पहचान पाए बल्कि जब हमने जाना पहचाना तो उस वक्त काफी देर हो चुकी थी और अगर आपको इल्म हो तो इसकी कहानियां किससे बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं इस पे आर्टिकल्स लिखे हैं ब्लॉग्स लिखे गए हैं तो इसलिए वक्त की कमी के बायस मैं हर चीज के ऊपर बात शायद ना कर पाऊं लेकिन एक चीज जिसपे आज का शो बुनेगा भरेगा और आप तक पहुंचेगा वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं जो इंसानी दिमाग है ना वो बहुत ही कारामद है बहुत ही दिलचस्प है उसकी मिसाल ऐसी है कि एक बार
Jeffrey Dahmer was about 5-6 years old. And very first time, uske baap ne usko sikhaya in janwar ka jo jism hota hai, usko dissect karna. Lobotomy jisko kehte hain, surgery jisko kaha jata hai. आम लफ्जों में अगर बताऊं तो उसके बाप ने एक बहुत खूबसूरत सी मिसाल दी दिमाग की. सो आई वांट यू टू लिसन दैट वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिएगा, देन यहीं से हम अपनी कहानी को आगे लेके बढ़ेंगे. उसके बाप ने कहा कि वो कॉलेज डेज में थे और साइंस की क्लास ले रहे थे, वहीं पर उनको एक प्रैक्टिकल दिया गया जहां पर उनको एक फ्रॉग यानी एक मेंढक के जिस्म को डाइसेक्ट करना था, यानी उसकी सर्जरी करनी थी. तो उनके जो प्रोफेसर थे और जो उनके पास मेंढक था यानी फ्रॉग था, उन्होंने उसके सर को धर से अलग कर दिया. अगेन आई एम टेलिंग यू, उसके बाप ने यानी जेफरी डामा के बाप ने अपने बच्चे को सिखाया कि जब मैं कॉलेज डेज में था और साइंस की क्लास ले रहा था तब मेरे प्रोफेसर ने फ्रॉग का जो सर था वो उसके धर से अलग कर दिया. बस एक चीज जोड़ी रखी, दिमाग का एक बारीक स्टेम सेल उसके साथ जोड़ी रखा. मालूम यह हुआ कि इस फ्रॉग यानी इस मेंढक की तमाम सेंसेस खत्म हो चुकी हैं, बट उसका दिल चल रहा है, उसके बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं, इसका मतलब ही इज अलाइव. लेकिन उसकी सोचने की या उसकी महसूस करने की सलाहियत बिल्कुल ही खत्म शुद्ध हो गई है, पीरियड. देन उसी प्रोफेसर ने एक कॉटन बर्ड लिया, उसको एसिड में डिप किया और फ्रॉग के जहां से सर अलग किया था वहां पर उसको टच करना शुरू किया उस कॉटन बर्ड से. आफ्टर जस्ट बिट ऑफ सेकंड्स फ्रॉग ने हल्का सा फरफराना शुरू कर दिया और जहां पर उसको कॉटन बर्ड महसूस हो रहा था वहां पर उसने वहां पर हाथ लगाना शुरू कर दिया. व्हाट इट डिपिक्ट्स, क्या समझ आया आपको कि दिमाग कितनी अद्भुत चीज है ना. यानी कि प्रोफेसर ने सब कुछ अलग करने के बावजूद एक स्टेम सेल जोड़ी रखा ताकि ऑर्गन्स चलते रहें और थ्योरेटिकली ये बता दिया कि फ्रॉग जो है वो कुछ महसूस नहीं कर सकता, उसे कुछ फील नहीं होगा, लेकिन उसे फील हुआ. सी हाउ द ब्रेन वर्क्स, अगर एक मेंढक का दिमाग इतनी कैपेबिलिटी रखता है तो इंसानी दिमाग क्या क्या कर सकता है, यू कैन नेवर इमेजिन. सो इट वॉज द ईयर 1959 जब एक महिला उम्मीद से थी, एक्सपेक्ट कर रही थी बेबी को. एंड एट दैट मोमेंट सर्दियों की रात थी, इट वॉज डिसम्बर, बहुत खूबसूरत सी लेकिन जबरदस्त सी स्नोफॉल चल रही थी और वो औरत अपने आप को शीशे में देख रही थी और कुछ कह नहीं रही थी. एंड ऑल ऑफ द सडन उसने घर से भागना शुरू कर दिया, वो भी नंगे पैर. याद रखिए वो महिला एक्सपेक्ट कर रही थी एक बेबी को और वो कुछ मंथ्स हामिला थी यानी प्रेग्नेंट थी. वो औरत भागते भागते एक बस स्टॉप पर जाकर बैठ गई, नंगे पैर, सर भी नहीं ढका और सख्त सर्दी है. उसी आधी रात में एक गाड़ी का गुजर होता है उस स्टॉप से, वो गाड़ी वाला एकदम से रोकता है गाड़ी और जूं ही अपनी शक्ल को मोड़ कर देखता है उस औरत को तो बेख्तियार कहता है जॉइस, यानी कि वो औरत उस शख्स की बीवी थी यानी मिस्टर डामर्स की वाइफ थी. एंड मिसेस डामर जिनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन था, वो उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बहुत कुछ उल्टा सीधा करती रही. वो उसी प्रेगनेंसी के दौरान एक दिन में 26 पिल्स लिया करती थी कुछ एंजाइटी की कुछ डिप्रेशन की कुछ स्लीपिंग पिल्स कुछ हेल्थ वाइज सो इट वाज अबाउट 26 पिल्स शी टुक एवरी सिंगल डे व्हाइल शी वाज प्रेग्नेंट तो दोस्तों अगर आप इस चीज को समझ रहे हो अगर इस बात को जरा समझ रहे हो तो हमें डॉक्टर्स क्या कहते हैं हामला खवातीन के बारे में कहा यह जाता है कि उनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है उनको अच्छी और हेल्दी एक्सरसाइज और डाइट देनी है मेडिकेशन से उनको दूर रखना है बिकॉज दैट्स दोज मेडिकेशंस नॉट गुड फॉर द बेबी खैर कहानी आगे बढ़ाते हैं जहां पर वो हामला खातून यानी मिसेस धामा यानी जॉयस अपने हस्बैंड को कहती हैं और सामने जो डॉक्टर बैठा है उसको भी कहती हैं कि शायद मैं कुछ फील नहीं कर पा रही बाकी खवातीन तो जब प्रेग्नेंट होती हैं और हामला होती हैं तो बहुत कुछ महसूस करती हैं खुशी का उनका ठिकाना नहीं रहता लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ बल्कि उल्टा मुझे ये सोच के हैरानी हो रही है कि ये मुझे हो क्या रहा है आई एम कंफ्यूज्ड ना मैं खुश हो पा रही हूं ना ही इस बेबी को महसूस कर पा रही हूं एक मां के लिए ये लफ्ज बोल देना बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई मां मेरी मेरा शो सुन रही है तो मैं जानता हूं आप मां हैं अपनी औलाद से बेहद मोहब्बत करती हैं और आप ये कभी भी सोच नहीं सकती बट दैट्स ऑल ट्रू एंड दैट्स ऑल बिलोंग्स टू मिसेस धामा यानी जॉयस जेफ का पैदा होने का दिन आया एंड दैट्स 27th ऑफ मई 1960 व्हेन जेफरी धामा बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसकी पैदाइश के बाद ही मियां बीवी में नोक झोंक और ज्यादा मजीद भरने लग गई जब जेफ 4 साल का था तो उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ एंड आफ्टर दैट ऑपरेशन उसके बाप का कहना है मिस्टर धामा का कहना है कि वो वैसा बच्चा नहीं रहा जैसे तमाम बच्चे होते हैं जैसे तमाम बच्चे खेलकूद में दिल लगाते हैं जैसे तमाम बच्चे पढ़ाई में दिल लगाते हैं वैसे मैंने कभी नहीं लगाया लेकिन बाज बच्चे बहुत अच्छे होते हैं वो पढ़ाई में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं बहुत दिल लगाते हैं और सोने पे सुहागा ये हुआ कि जेफ को कभी भी अपने पेरेंट्स की तरफ से अटेंशन नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए वक्त बीतता गया जेफ 6 साल का हुआ और पहली बार उसने किसी चीज में इंटरेस्ट लेना शुरू किया एनी गेसेस किस चीज में इंटरेस्ट लेने शुरू किया मैंने उस चीज का जिक्र पहले ही कर दिया था कि जब उसके बाप ने वो मेंढक वाली कहानी उसको सुनाई और मजेदार बात यह है कि उस वक्त एक चूहा नुमा जानवर उनको अपने घर के बैकयार्ड में मरा हुआ मिला जहां पर मिस्टर धामर ने कहा कि व्हाई नॉट हम इसको डाइसेक्ट करते हैं और इसके इंटरनल ऑर्गन्स को देखते हैं जेफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जेफ को बहुत अच्छा लगा कि ये कोई ऐसी चीज है जो उसके इंटरेस्ट में मजीद जान डाल रही है तब किसको क्या पता था यही जेफरी धामा एक मॉन्स्टर की शक्ल में बाहर आएगा ऐसा नमूदार होगा इस दुनिया के सामने में कि दुनिया दंग ही रह जाएगी और शायद किस्सों पे किस्से बयान करती चली जाए और जेफरी धामा का नाम और मजीद मजीद और मजीद आगे बढ़ता चला जाए खैर वक्त बीतता गया और जेफ हाई स्कूल में पढ़ने लगा लेकिन उसकी उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था एक बार साइंस की क्लास में उसको भी एक फेटल पिग को डाइसेक्ट करने का मौका मिला और वो ये मौका गंवाना नहीं चाहता था उसे बहुत अच्छा लगा जबकि उसकी जो पार्टनर थी लिंडा उसे घिन आ रही थी She kept saying कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकती. और जेफ जो एक भी बात नहीं सुनने को तैयार था, उसने कहा कि हम ये करेंगे. और पूरी क्लास में उसने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, यहां तक कि उसका जो प्रोफेसर था जेफरी डामर का, वो भी बहुत इंप्रेस हुआ. और जेफरी ने, यानी जेफ डामर ने, अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट कर दी कि क्या मैं एक फेटल पिग घर लेके जा सकता हूं जस्ट फॉर अ होमवर्क, जस्ट फॉर अ प्रैक्टिकल यूज. तो टीचर ने एक चीज बोली, टीचर ने कहा कि मेरे 26 साल के कैरियर में कभी किसी ने ऐसे जानवर नहीं मांगा, तुमने मांगा है, मैं तुम्हें इनकार नहीं कर सकता. इसलिए उसने एक फेटल पिग जेफ को दे दिया. ये तमाम तर चीजें चल रही थी, जेफरी डामा अकेला रहता था. लोग ज्यादा उसे दोस्ती करना पसंद नहीं करते थे, और वो भी शायद ज्यादा दोस्त बनाना नहीं चाहता था, या शायद बना नहीं पाता था. हमेशा निग्लेक्ट होता था, मां बाप की लड़ाई देखता था. एक बार जेफ घर में ही था, और हमेशा की तरह मां बाप में नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा चल रहा था कि जब जेफ की नजर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी मां ने अपने खावंत पे, यानी जेफ के बाप पे, छुरी उठा ली है. जी हां, अब सिर्फ एक बात सोचिए, दिलो दिमाग को शांत कीजिए और एक बात सोचिए. बच्चा जो कि एक स्कूल गोइंग बच्चा हो, ख्वाह वो कैसा भी हो, शरारती खामोश तबीयत का, लेकिन जब वो इस तरह के मामलाते जिंदगी देखेगा तो आप क्या समझते हैं कि उसके दिमाग पर कुछ अच्छा असर पड़ेगा या नहीं? या फिर जो लोग उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, जो लोग वक्त नहीं देते, जैसे हम आजकल के दौर में देखें. जी हां, मैं आपसे मुखातिब हूं. अगर आजकल के दौर में देखें तो कहां वक्त है किसी के पास? किसी के पास कोई वक्त नहीं किसी के लिए. चंद लम्हात भी अगर हम किसी को दे दें आज के वक्त में तो बहुत बड़ी बात समझी जाती है. तो वहां सोचिए अगर कि किसी को हमारी जरूरत है, कोई हमारे करीब है, कोई हमारा दोस्त बनना चाहता है, कोई हमसे अपने दुखों का इजहार करना चाहता है, हमारे कंधे पे सर रख के रोना चाहता है, तो हम दुनिया वाले क्या करते हैं उसके साथ? हम अकल वाले क्या करते हैं उसके साथ? धुतकार देते हैं उसे, बिल्कुल एक साइड पर रख देते हैं. हम एक ऑड होने का टैग लगा देते हैं कि ये हम में से नहीं है, ये हमारा दोस्त नहीं है. जेफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, स्कूल डेज में भी और घर पे भी. और इन्हीं स्कूल डेज के दौरान जब वो 16-17 साल की उम्र में था, तब उसके मां बाप की डाइवोर्स हो गई. जस्ट इमेजिन, ये कितना कुछ है एक इंसानी दिमाग को सोचने के लिए, और स्पेशली एक ऐसे बच्चे पे क्या असर होगा कि जहां पर उसको कोई खुशी के मौके नहीं मिलते, जहां पर उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलती, जहां पर उसके पेरेंट्स उसके साथ बैठकर चंद लम्हात, कुछ पल, कुछ मेमोरीज, कुछ यादें नहीं बनाते. जरा सोचिए, क्या वो इंसान इंसान रहेगा या नहीं? अब मजेदार बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ यूं है. सो जेफ की उम्र थी 16-17 साल के लगभग, और जब मां बाप की डाइवोर्स हो गई तो मां बाप बिल्कुल ही छोर छार गए. और उसकी मां का कहना यह था कि जेफ जो है वो अब 17 साल का है, वो अपने अच्छे बुरे की तमीज जानता है, उसने डिसाइड करना है कि उसने मां के साथ रहना है या बाप के साथ या अकेला ही रहना है. तो बाप और मां दोनों ही अपना अबाई घर छोड़कर चले गए जहां पर जेफ बिल्कुल अकेला रहने लग गया। अब जब वो अकेला रहता था तो उसे एक बुरी इल्लत, बुरी आदत लग गई। मैं उसमें कुछ उसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जिस वो काम करने से, वो ऐसी आदत थी, वो पीने से, पी लेने से इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है। तो इन जेफ को वो इल्लत बहुत ही जबरदस्त किस्म की लग गई, इवन स्कूल डेज में ही लग गई। उसके दो ही शौक रह गए थे मां बाप के चले जाने के बाद, यानी डाइवोर्स हो जाने के बाद, एक बहुत ही ज्यादा पीना और दूसरा कसरत के साथ वर्जिश करना। इसी दौरान जेफ हमेशा सुबह के टाइम देखता था एक हिच हाइकर को, जो कि जॉग करने, वॉक करने हमेशा सुबह के टाइम निकला करता था। अब जेफ इमेजिनेशन में उसको अपने घर पर कई बार महसूस करता, देखता, तो जेफ का दिल किया क्यों ना मैं इससे दोस्ती कर लेता हूं। लेकिन जेफ कोई आम इंसान तो था नहीं कि वो आराम से भी कोई दोस्त बना ले, बल्कि उसके हैवान जैसे दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना वो इस हिचहाइकर को मार दे और उसकी जो बॉडी है उसको अपने पास रखे और दोस्त बना ले। मैं जानता हूं जो अगली बात बताने वाला हूं उसको सुन के शायद आपके औसां खता हो जाए। तो जेफ ने अगले दिन क्या किया, जेफ ने बेसबॉल बैट उठाया और चल निकला उस हिचहाइकर की जानिब। इंतजार करता रहा झाड़ियों के पीछे कि कब वो आए और वो शिकार की तरफ लपके, लेकिन जो ही वो लड़का उसके सामने आया तो जेफ कुछ कर नहीं पाया। उसे समझ नहीं आया उसे क्या करना चाहिए और वहीं पर वो कुछ नहीं कर पाया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, वो उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाया। और वो जो दूसरा लड़का था, जब उसने उसको, जेफ को इस हुलिये में देखा कि वो उस पर अटैक करने वाला है, उसे मारने वाला है, तो उसने वहां से दौड़ लगा दी जैसे हम अक्सर करते हैं, भाग जाते हैं। अगले दिन जेफ को उसकी खुशकिस्मती से एक और शख्स, एक और लड़का मिला जो कि कॉन्सर्ट पे जाना चाहता था लेकिन रास्ता भूल गया था और वो भी हिचहाइकर था। तो जेफ ने सोचा क्यों नहीं मैं इसको अपना दोस्त बना लेता हूं। उसने उसे पूछा कि क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं, बिकॉज जेफ के पास अपनी गाड़ी थी। जेफ ने कहा कि मे बी आई कुड गिव यू अ राइड, बट व्हाट यू नो यू कैन कम ओवर एट माय प्लेस, we can have some fun, I do have some dumbbells, weights, we can do this and then later on I can drop you off. To usne, Jeff ne pooch liya ki concert kitne baje shuru hona hai, usne kaha 7:30 baje, around 7:30, half 7. Jeff ne kaha abhi to 5:15 ka time hai, to chalo meri taraf chalo. Ladke ne kaha why not, it's a good idea, wahan par jaake thoda relax karunga, fun karenge, chill karenge and then concert pe jayenge. लेकिन उसे क्या पता था कि वो किसके हत्थे चरने वाला है। वो एक ऐसे शैतानी दिमाग रखने वाले के हत्थे चरने वाला है कि शायद ये दिन उसका आखिरी दिन हो। और हुआ भी कुछ यूं ही, जब कुछ वक्त बीतने के बाद उस हिचहाइकर ने उससे रिक्वेस्ट की कि प्लीज अब मुझे छोड़ आओ, मेरे दोस्त मेरे वहां पर इंतजार करते होंगे। कोई पेगासस नाम का बैंड था जो उस टाइम पे बहुत मशहूर था In the early 80s, तो मुझे वो देखना है, मैं वो कॉन्सर्ट मिस नहीं कर सकता। बहस चल रही थी और जेफरी डामा को इतना गुस्सा आया कि उसने एक वेट उठाया और एकदम से उसके सर पे दे मारा।
लड़का खून में लथपथ जमी बॉस हो गया। जेफ को मजीद गुस्सा आया, उसने उस लड़के का गला दबाया और उसे मार दिया। कुछ पल के लिए जेफ को होश नहीं रहा, लेकिन जब उसे होश आया, जब उसने एक अपने सामने एक लाश देखी, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये मैंने क्या किया, ये मुझसे क्या हो गया। और इस दुर्घटना में उसको कुछ समझ नहीं आया, वो चिल्लाता रहा और डरता रहा और खिड़की से बाहर रात तक देखता रहा कि कहीं कोई पुलिस की गाड़ी, कहीं कोई इस शख्स का जानने वाला उसको ढूंढते ढूंढते यहां तक ना आ जाए। लेकिन उस रात कुछ नहीं हुआ। 17 साल की उम्र में उस जेफ ने पहली बार एक इंसानी जिस्म की लिपोटमी की और ट्रैश बैग्स के अंदर उसके तमाम तर हिस्से डाले और ले गया कहीं डंप करने। यहां पे ट्विस्ट है जनाब। जब वो जा रहा था तो पीछे एक पुलिस की गाड़ी ने उसको रोका और कहा कि पुल ओवर, हमने तुम्हें तुम्हारी आईडी चेक करनी है, हमने तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना। और उन पुलिस वालों को जरा अजीब सी हमक सी आई उसकी गाड़ी से। पूछा भी उन्होंने कि ये बिन बैग्स में क्या है भाई, तो जेफ ने आगे से कहा कि वो मेरे माँ बाप का डाइवोर्स हो गया है तो मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि घास काट लेता हूं, घर का कूड़ा करकट जमा कर डंप कराता हूं, तो बस यही करने निकला था मैं। पुलिस वाले ने जब यह सुना तो उसे जाने दिया। यकीन मानिए, जेफरी डामा उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 17 साल का था जब उसने ये जुर्म किया। उसने उस लाश के साथ क्या किया, क्योंकि वो डंप करने तो जा नहीं सकता था। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, ये जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज इट्स जस्ट पार्ट वन। अगर आपको ये पार्ट वन बहुत अच्छा लगा है, कहानी बहुत मजे की लगी है और जो कि बिल्कुल अभी शुरुआत है, तो प्लीज लेट मी नो ऑन एट 07444202155। और यहां पर नवीद भाई भी हमें कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, थैंक यू सो मच नवीद भाई फ्रॉम स्वीडन, जज़ाकअल्लाह खैर। सो वी आर नॉट स्टॉपिंग हियर, वी विल बी डेफिनेटली बैक विद द पार्ट टू, स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर because it's spooky night.
Sangam, in association with Haji Jewelers, 68 Hotwood Lane, Halifax, HX1 4DG, providers of gold and silver jewellery for all occasions. Call